यशोदा जी जैसे उनको खोद कर या बांधा तो बंधन में बंध गए। यशोदा जी उनको भय दिखला रही हैं, उन्हीं लीलाओं का चिंता करते वैसे ही कृष्ण को गर्जन सर्जन करके उसको भय से उनको बांधेंगी अपने प्रेम की डोर से। भीति भय भीति इत्यादि बतला है अंत में। जब काम क्रोध काम सहज प्रणया विभीति बात्सल्य मोह गुरु गौरव सिद्ध भाव, इसकी आगे अपेक्षा करें। इस प्रकार से भगवान का भजन हो, इसी प्रकार से चिंतन हो, जैसे कि हम लोग दिन रात चिंतन करते करते मरते समय वही की चिंता रह जाए, बस वैसी हो जाए। आज जो ऐसा नहीं करेगा, यहाँ बैठ करके यदि चिंता करेगा, बद्रीनारायण जा रहा था मेरा बद्रीनारायण जाना अभी नहीं हुआ, तो क्या होगा? कोई सोच रहा है कि घर हमको जाना है, घर की चिंता कर रहा है, कोई कुछ चिंता कर रहा है, कोई सो रहा है, विचित्रा जी सो रही है, वाह वाह, सो मत मैं खड़ा कर देंगे संप्राप्त। इस प्रकार से निगम इत्यादि ऐसा कहते हैं, निगम मैंने वेद इत्यादि में भी ऐसा कहा गया है, इसलिए अष्टकालीय लीला बेकार नहीं है, वो हमारा आराध्य है, हमारा वही उद्देश्य है। यदि हम अपने साधन भजन में 50 वर्ष में 10 वर्ष में इन चीजों को नहीं जाना तो आदमी क्या करेगा? उस गुरु को ऐसे प्रणाम करके बाएं रखकर या दाहिने हम आगे बढ़ेंगे, अन्यथा फिर हम इसी में रह जाएंगे, तो गुरु और चेला दोनों जाएंगे क्या जहन्नम में, जहां खुदा की कसम, खुदा की कसम कहते हैं। हम भजन करने के लिए अपना ये सर्वस्व दिया है, अपने जीवन के साथ में किसी से खिलवाड़ करने के लिए जीवन नहीं दिया है, इस चीज को याद रखना चाहिए। जो हमारे जीवन के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, हमको कठपुतली बना करके संसारिक विषयों में लगा रहे हैं, नहीं, हम शुद्ध रूप में भजन करें। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी ताभी जये मनि जरु पतया सना गोरो गोविंद मानि दुर्गम। उसी का जो अभी कहा उसी का ये प्रमाण है, उसी का ये प्रमाण है। आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी है, ये राजा जी के लिए बतलाया गया। विशेष करके साधी ये एवं नीच रूप से ये गोपियां क्या हैं? राधा जी की काजू। ये राधा जी कौन है? अरे कृष्ण ही समझो, निज रूप तया कलाभी, कृष्ण के रूप ही के समान ये सच्चिदानंद स्वरूप। बल्कि कृष्ण को कौन प्रकाश करता है? स्वरूप शक्ति प्रकाश करती है। कृष्ण ऐसे नहीं प्रकाशित हो सकते थे, कभी संभव पर नहीं। इसे शक्ति की शक्ति शक्तिमान दोनों अभिन्न और एक ही हैं, तभी शक्ति की भी कुछ प्रधानता है, बिना उसका आश्रय लिए ये नहीं प्रकाशित हो सकते। तो जो जैसा वो चिंतन करके उनका भजन करेगा, एक उसी रूप में उस स्थान को पाएगा, गोपियों का अनुगत्य उनको मिलेगी प्रति में और उनकी उसी प्रकार से सेवा करने हैं। इसलिए ऐसे जो कृष्ण हैं, ऐसे गोपियों के साथ में राधा जी के साथ में सब समय क्रीड़ा करते हैं, उनकी जय हो जय हो। ये आदि पुरुष गोविंद हैं। प्रेमांजन छुरी सर जन छुर, कोई कोई भक्त प्रेम को अपना अंजन बनाकर सब समय अपने हृदय में उनको श्याम सुंदर के रूप में दर्शन करते, तभी नहीं जैसे ऐसे गोविंद को मैं पुनः पुनः प्रणाम कर रहा हूं, भजन कर रहा हूं। रामादिमूर्ति Thank you. प्रभा प्रभव जंका क्रोध काम सज प्रणयादि भीति वात्सल्य मोह दुर्गमते भावे सभी उनका भजन किया जा सकता है, विशेष करके उसके द्वारा कृष्ण अधिक रीत है। जब गोपियां क्रोध कर बंकिम दृष्टि से क्रोध से थोड़ा उनको दुत्कार कर देती हैं तो वो कैसे प्रसन्न होते हैं जब ब्रह्मा जी की स्तुति से नहीं होते। विशेष कर चतुर्दशो न जाने क्या क्या कहती हैं, ब्रज के प्रसिद्ध वो लंपट लंपट शिरोमणि इत्यादि कहती हैं, क्रोध से कहती हैं और ये प्रसन्न होते हैं काम काम के द्वारा। सहज प्रणय, सहज प्रणय मैंने क्या और स्वाभाविक नहीं, सहज ही उनमें प्रणय आदि भीति भीति मैंने उनको डरा करके वात्सल्य के द्वारा मोह कृष्ण को ही मोह हो जाता है या उनको मोह होता है, दोनों को ही ले सकते हैं। दोनों का मोह माने क्या, यशोदा जी मोहित हो जाती हैं कि हमारे बेटे के मुख में ये ब्रह्मांड कहां से आया, या यशोदा जी उनको बांध देती हैं तो कृष्ण ही मोहित हो जाते हैं, उनके बंधन को कोई खोल नहीं पाता, नंद जी भी नहीं यशोदा कोई भी नहीं खोल पाता, ऐसे हो जाते हैं। उस समय कृष्ण भी मोहित हो जाए मुग्ध हो जाते हैं और रोने लगते हैं, जानबूझ करके नहीं स्वाभाविक भाव से ही रोने लगते हैं। मोह गौरव, गौरव मैंने गौरववाद से, जैसे गर्गाचार्य इत्यादि वो वसुदेव इत्यादि गौरव भाव से गौरवादी चित्त भाव से उनका भजन करते हैं। जिस इनमें से किसी कोई भाव को ले लो उस प्रकार से चिंतन करके जब उनका भजन करता है तो वैसे ही वैसे शरीरों को धारण करके ब्रज में वैसे ही रूप आसन महिमा इत्यादि प्राप्त करके ब्रज में जा करके ऐसे गोविंद जी का भजन करता है, सेवा करता है। यहाँ पर भजन माने सेवा को प्राप्त होता है। ऐसे जो गोविंद आदि पुरुष हैं तम हम भजामि, उनका मैं भजन नमामि नंदनंदन नमामि नंदन पाठ करती हैं। इसके लिए राधिका जी इस श्लोकों को सुन करके प्रसन्न होती हैं, स्तोत्रों को। कि प्रसन्नता से क्या होगा, कृष्ण अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। कृष्ण यदि रुक भी जाए राधिका जी यदि प्रसन्न है, इफ कृष्ण इज एंग्री बट श्रीमती राधिका इज सेवेबल देन नो हर्ट इन अ सेकंड ही विल बी टर्न। इसलिए इनको हम कृष्ण की स्तुति तो करें किंतु राधिका जी प्रसन्न हो जाएं। इसलिए अब कृष्ण जी कैसे प्रसन्न होंगे, राधिका जी के कृपा कटाक्ष इत्यादि के स्तवों के द्वारा। मुनिन्द्र करने से जो कोई इसका पाठ करेगा विशेष करके पूर्णिमा के दिन अष्टमी के दिन एकादशी के दिन दशमी के दिन सवेरे 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में या रात में विशेष करके ये यदि राधा कुंड के जल में घुटने भर जल कमर भर जल और नाभि तक के जल में अथवा गले तक के जल में खड़े होकर एक बार पाठ करें, यदि 100 करें तो कोई बात नहीं है, 100 बार इसका पाठ करें, प्रेम से आतुर होकर के चित्त को गदगद स्वर से यदि कोई पाठ करे तो क्या होगा, प्रजन्य सुंदु मंडल प्रवेश, उसके सारे पाप ताप तो ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो होंगे ही साथ में प्रजंत सुनू, ये जिनका हम लोग पाठ कर रहे हैं उनके मंडल में, उनका सबसे बड़ा श्रेष्ठ मंडल क्या है, सखाओं का मंडल है, मैया माता पिता इत्यादि के मंडल हैं, गैया का मंडल है, बछड़ों का मंडल है, सबसे अधिक है सखियों का मंडल, रास मंडल है, रास मंडल से भी राधा कुंड का मंडल और श्रेष्ठ है, तो ऐसे मंडल में ये प्रवेश करा देते हैं। कौन ये निश्चित रूप से, इसलिए ये राधा जी का स्वरूप समझो, राधा जी का स्वरूप है जैसे राधा कुंड राधा जी का स्वरूप है, इसको भी ऐसे ही समझो, इसके ये फल है। तो कृष्ण हठात प्रकट हो जाएंगे और बोलेंगे वर मांगो, क्या चाहते हो, एकदम परम पुरोहित परम पुरोहित करने लग जाएंगे, कहे नहीं प्रभु हम तो वर मांगने नहीं आए हैं, तो यदि आप प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे, हाथ जोड़ करके उनसे यही मांगो, श्याम सुंदर शिखंडे कर मेरा संगली मनोहर, राधिका रसिक मन कृपा निधे सप्रिया चरण की प्राणनाथ विश्वानंदिनी चरसलोल सड़क राधिका पद तले कीर्ति रसिकेन्द्र से संविधाय दतने प्रियं अर्थये गज महेन्द्र नंदन अस्तु मोहन सवा जन्मनि मनी। श्याम सुंदर यदि आप प्रसन्न हैं, श्याम सुंदर मेर हाथ मंद मुस्कान वाले मधुर मुस्कान वाले श्रीखंड शेखर, श्रीखंड अपने सिर पर मोर मुकुट को धारण करने वाले यदि आप प्रसन्न हैं तो क्या करें, मेर हाथ मुरली राधिका रसिक, राधिका के रसिका है, सौ प्रिया चरण किंकरी अपने प्रिया जी के चरणों की किंकरी बना दी, जैसे रूप गोस्वामी जी ने कहा हा देविका तू भर गदगदी अस्य प्रसाद न बुधस्य जनस्य कृत्वा गंधर्व के तव गणे गणनांदी। यदि आप प्रसन्न हैं क्या करें, अपनी गणों में दासों की अनुदासियों की दासी के दासी के रूप में या चैतन्य महाप्रभु करते हैं गोपी भर तू पद कमल गोपी भर तू, इसका अर्थ क्या होगा, कृष्ण के चरण कमलों का दास न क्या होगा, ये गोपी शब्द यहां लगाया है, यहां पर गोपीनाथ होंगे तो यहां पर गोपीनाथ मैंने राधा जी के साथ में है, वहां पर कोई पुरुष का अधिकार नहीं, वहां पर सखियों का अधिकार केवल रहेगा, तो गोपी भर्तु पदकमल हो गोपियों के जो भर्ता अर्थात गोपियों के जो प्राणनाथ गोपीनाथ प्राणनाथ गोपी बल्लभ हैं उनके दासियों के दासियों की दासी की दासी, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं अपने को ये समझे, ये स्थूल अभिमान भूल जाओ, पूर्व इतिहास भूलि नु सखाओ सेवा सुख पे मन, ये सब भूल जाओ, ये मैं ये हूँ उनकी पत्नी हूँ उनका पति हूँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये भूलो, भूल करके ये अभिमान हृदय में हो, इसलिए कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं श्याम सुंदर स्नेह हास मुरली मनोहर राधिका रसिक मां कृपा निधे स्वप्रिया चरण से प्राणनाथ विषभानु नंदिनी श्रीमुखाब्ज रस लोल सतप, भवन के समान में अपने प्रिया जी का मुख आस्वादन करने वाले हे कृष्ण आप बड़े उदार हैं दाता शिरोमणि हैं, बस यही आपसे प्रार्थना करता हूँ कि राधा राधिका के चरण की सेवा पद तले कृति स्थिति मैं उनके चरणों की तलों में राधा कुंड में बास करती और छोटी मैं सेवा, इसका इससे और कुछ नहीं चाहिए। इसके बाद में संविधा दसने तीर्णम, अपने दांतों के तले तीर्ण दबाकर गले में होकर के तीन हीन तीर्ण होकर के आपसे यही प्रार्थना करता हूँ, क्या जन्म जन्म में आपकी प्रिया जी राधिका जी की दासी की दासी की अनुदासियों की चरण की धूली में बने, इसके अतिरिक्त तो कुछ नहीं, ऐसी शब्द लेकिन हम सुखद होता बहुत किलो अब बहुत देरी होगी, 9 बजने जा रहा है, हम भी उठेंगे, इसलिए थोड़ा सा महामंत्र
तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे गौरचंद्राय राधिकायै सुदाने नाय कृष्णभक्ताय तदवक्ताय नमो यं प्रव्रजन्तमनुपेशमपेक्षकृत्यं द्वैपायनो विरहकातरया जिहं पुत्रेति तन्मयतया सर्वो
विशेष रूप से इस वर्ष की जयंती जो है आई दिन क्या है
सोमवार
रोहिणी नक्षत्र युग होगा रात में, अभिजीत मुहूर्त है और अष्टमी तिथि भादों का महीना, कृष्ण के जन्म के समय में जो तिथियां थी वो प्राय समस्त तिथियां एक साथ में इस वर्ष में एकत्रित हुई, एक दुर्लभ योग है और इस दुर्लभ योग में आप लोग इस मथुरा में पधारे, ये कम सौभाग्य की बात नहीं है, और वृंदावन आप लोग हैं, इसलिए हम लोग बड़े सौभाग्यवान हैं। ये कृष्ण है कौन, वेद उपनिषद निगम आगम पुराण यामल सभी एक स्वर से कहते हैं कि ये परम ब्रह्म की परम तत्व की चरम सीमा है। श्रीमद्भागवत में इसीलिए कहा गया एक चांस कला संसद कृष्ण स्तू भगवान, गीता में कहा गया मत्तः परतरम नन्यत किंचित अस्तित्वम्। अरे ब्रह्म ब्रह्म क्या करता है, क्या ब्रह्म ब्रह्म करता है, वो ब्रह्म तो उनकी अंग की छटा एक है, वो कौन से अंग की, मुखारविंद की, चरणों की, कनिष्ठ अंगुली की, ये नख की, चंद्रिका की छटा है, इसलिए ब्रह्मणो प्रतिष्ठा अहम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा, और क्या हूं शास्त्र अव्यय सत्य सुख शांति एकांतिकी इत्यादि सबका मैं मूल प्रतिष्ठा, ये सारी चीजों का मैं परमतत्व स्पष्ट रूप से गीता में कहा, इसलिए कहा सर्वधर्मानुप्रत्यजमान एकम शरण। उपनिषदों में भी नारायणाय वासुदेवाय धीमहि इत्यादि कृष्णाय वासुदेव जी को के पुत्र को ही वेद लोग स्पर्श कर रहे हैं, ब्रजेंद्रनंदन को तो वेद स्पर्श ही नहीं कर सकते, इसलिए लोगों अंधे लोगों को ये वेदों में उपनिषदों में स्तुतियों में कृष्ण का नाम ही नहीं दिखाई पड़ता, ये तक घोर अंगिरत कृष्णाय स्वाहा इत्यादि लिखा वेदों में, उन उल्लू जैसे उल्लू पक्षी जैसे उल्लू होते हैं उनको दिन में दिखलाई सूर्य नहीं पड़ता, ऐसे उन उल्लुओं को कृष्ण वेद में दिखाई नहीं पड़ते, कुछ हमारे भारत के उल्लू लोग पहुंच गए थे वहां हॉलैंड में, जब वेदों का वेदों में कृष्ण का नाम है तो उल्लू को कैसा दिखाई पड़े। तो हमने उनको दो चार ये सब सुनाए, कहा जैसे इंडिया में आना तो तुमको वेद दिखला, वेद तो देखा नहीं होगा, हम वेद दिखला कर तो उसमें आपको दिखला देंगे किसी न किसी रूप में। सर्वत्र ऐसा कोई शास्त्र भारतीय वाङ्मय नहीं है जिसमें कि उनका नाम नहीं है। वेदों में उपनिषदों में सर्वत्र यहाँ तक कि इस रूप में दिखा गोकुल में जो कृष्ण है, ब्रज के जो कृष्ण है, उनसे कोई दूसरे कृष्ण है जो मथुरा में जन्म लिए। दूसरे कौन? उनका वैभव प्रकाश जो मथुरा में उन्होंने जन्म लिया, इसलिए कृष्ण का अंकित रूप में यहाँ पर जन्म है। और पूर्ण रूप से जन्म कहाँ है? गोकुल में यशोदा मैया के गर्भ में, एकदम स्पष्ट रूप में सर्वत्र लिखा गया। आनंदमय और अभ्याता वेदांत का जो अंतिम श्लोक है, आनंदमय का अभ्यास करो, भजन करो। सुना सुना ब्रह्मा आनंदमय हो सकता है? वही ब्रह्म जब है तो आनंदमय होगा, नहीं तो जिसका रूप नहीं है, सकल नहीं है, सूरत नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई दुर्गुण नहीं है, जो जीरो है, शून्य है, वो आनंदमय कैसे होगा? उसका अभ्यास क्या होगा? एकदम संपूर्ण रूप से ब्रह्म, उसको तो कोई गुण नहीं है। आपको कोई दुख कष्ट हो रहा है उसको पता ही नहीं है, वो आपका क्या कल्याण कर सकता है? वो तो शरीर धारण भी नहीं करता, ठूठा ब्रह्म है। इसलिए ब्रह्म के लिए इन्हीं को अभ्यास। कोई कहता है उनका रूप नहीं है, रूप नहीं है, अरूपवत एवही तत्प्रधान, माने क्या वो रूपवत नहीं है, न रूपवत रूप है, उसका रूप है ये गलत है, उसका रूप है। अरे वो रूप तो एकदम स्वयं रूप वो स्वयं वो विग्रह स्वरूप है, अरूपवत नहीं है। इसी में चैतन्य महाप्रभु ने साथ हम भट्टाचार्य और प्रकाशानंद सरस्वती के तर्क वितर्कों का खंडन करके वहां पर कृष्ण का रूप स्थापित कर दिया, और वहीं पर ये गोविंद जी ही परम तत्व है, ब्रह्म है, ये सब बतलाया। किस लिए जगत में पधारे? पधारे किस लिए जगत में? जगत में तो सर्वत्र है ही है, अणु अणु में है, किंतु प्रकट रूप किस लिए रूप हुए? बहुत से कारण है, एक दो कारण नहीं, जिसमें साधारण रूप में मुख्य और गौण दो कारण बतलाए जाते हैं। जदा जदा ही धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतम्, अभ्युत्थानम् धर्मस्य ग्लानि निर्भवति भारतम्। धर्म की संस्थापन करने के लिए, धर्म को दूर करने के लिए, दुष्कृत जनों का विनाश करने के लिए और भक्तों की रक्षा के लिए जगत में प्रकट हुए। एक तो ये गौण कारण है। ब्रह्मा इत्यादि गौ को साथ में लेकर के फिर समुद्र में उनकी आराधना की, जब पृथ्वी पर बहुत भयंकर क्या भार हो गया है, आप उतारिय ने तो पृथ्वी रसा करने के लिए, ये भी कारण है, किंतु ये गौ कारण है। क्यों? ये तो अपने अंशों के अंश के द्वारा महाविष्णु विष्णु गर्भोदशाई के द्वारा ये सब काम करा सकते हैं। गर्भोदशाई विष्णु के द्वारा फिर सही उनके अवतारों के द्वारा ये सब काम सहज हो गया। युग धर्म की प्रतिष्ठा, कंस को मारने के लिए कृष्ण को आने की जरूरत नहीं, ये तो महाविष्णु इत्यादि के द्वारा ही उनका सही रूप में वध किया जा सकता है, लोक आभास दूर किया जा सकता है। किस लिए आए? भक्त विनोदान विनोदाय, कृष्ण अपने भक्तों का विनोदन करने के लिए आते हैं। परित्राणाय साधु नाम, मैंने साधारण जो साधक है उनके लिए यही लिख सकते हैं। प्रहलाद इत्यादि को कष्ट को दूर करने के लिए जैसे आते हैं, कंस के अत्याचार से बचाने के लिए आए, किंतु ये भी गौण अर्थ है। ठीक आगे और जब पढ़ेंगे अपने भक्तों के वचन को पूर्ण करने के लिए, क्या है वो? सत्यादि भाषिता और भक्तों के लिए आए। इन भक्तों में कौन? कश्यप और अदिति को लीजिए। कश्यप और अदिति लाख वर्ष तक अपने अंगूठों को सिर पर रखकर और नख के केवल बल पर हजारों वर्ष बिना खाए पिए तपस्या की, तब भगवान उनके सामने आए। आज एक उपवास है ना, वो तो हजारों लाख वर्ष तक ऊपर रख करके अपने नख के बल पर केवल सारे शरीर को खड़ा कर दिया, खाया पिया नहीं, हवा भी बंद कर दिया लाख वर्ष। और मैं समझता नहीं अभी तक हम लोग में से कितने आदमी ने, हम लोगों ने पानी पी लिया होगा, पी लिया होगा पानी पी लिया होगा। और नहीं तभी महाराज जी आ गए, कब तक बैठेंगे न जाने है? कितना बज गया, सवा आठ बज गया, महाराज अभी उठ नहीं गए, कब जाते तभी जलपान होता, पानी पी लेते और लाख वर्ष वो करते थे। और तब लाख वर्ष के बाद में उनको एक झलक के लिए दर्शन दिया और आप लोगों को ऐसे ही दे देंगे, आप लोगों के माने देने के लिए बैठे हुए उपवास। अंततः जब तक उनका जन्म नहीं होता है तब तक उपवास करो, यदि भगवान सतुष्ट में तुम उपवास करना है। उपवास केवल नहीं खाने से ही नहीं होगा, भोजन का बंद करने से नहीं होगा, उन शिष्य से भी उनके समीप बैठो, अपनी सारी इंद्रियों को कृष्ण के निकट ले जाओ। कैसे होगा? संकीर्तन श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम सारी इंद्रियों के द्वारा उनके लगा दो, तब उपवास। अथवा मंदिर में बात भगवान के समीप तुलसी के तले यमुना के किनारे निकट में बात करने से उपवास होता, क्यों न तो उल्लंघन, केवल उल्लंघन से नहीं होगा। आज देखूंगा मैं, सबसे पूछूंगा एक एक आदमी से, ब्रह्मचारियों से भी पूछूंगा कि 12 बजे तक कौन उपवास किया। इसमें महिलाएं किंतु आगे बढ़ जाएंगी, वो हम कहेंगे कि पानी पी लो तभी नहीं पियेंगी, ये लोग कल सूर्योदय के बाद में ये अनुकल्प कुछ नहीं पालन करेंगे, इधर नहीं करेंगे, किंतु पुरुष में सब लोग पिछड़ जाएंगे, बहुत कम ही होंगे, किंतु तुम लोग चेष्टा करो। ये कहाँ तक रह सकता है, आज मेघ भी हो रहा है, आज वर्षा हो रही है, दिन सुहावना है, विशेष करके हमको मोटे लोगों का भय है कि वो अभी तक पानी पी न लिए हो, पतले दुबले वाले जो है ना या हुए वो तो कर लेंगे किसी तरह, दुबले तो उनके लिए जरा डर है, इसलिए खूब सावधानी से रहना। यदि संकल्प कर लो कि हम नहीं पानी पिएंगे तो वो प्यासी नहीं जाएंगे। इसलिए रात में 12 बजे ठाकुर का जन्म होगा, चरणामृत लेकर के सभी चावल अन्न और ये कोई पराठा इत्यादि बाजार में आज ये जाकर के मत खा लेना, यहाँ पर तो मिलेगा नहीं किंतु बाहर में ये सब मिल सकता है, वहां पर भी जाकर के मत खाना। आज अनुकल्प यहाँ पर थोड़ा सा जो मिल जाएगा कर लेना, और जो नहीं करेंगे तो बहुत अच्छा है, कल छोड़ेंगे। कल में भी एक बात है, दो प्रकार के विचार है, एक तिथि के अंत में पारण होता और एक होता है नक्षत्र के। तिथि के यदि हम करेंगे नक्षत्र तो रोहिणी नक्षत्र के बाद में पारण करना होगा, और रोहिणी नक्षत्र 4 बजे शाम तक है तो तब तक के लिए उपवास रहना होगा, तब तक उपवास रहना, 4 बजे शाम के बाद में पानी कुछ ले सकते हैं या कोई चीज। कल आज कल, और दूसरी बात, यदि ऐसा नहीं है तो भगवान कृपा कर देते हैं, एक तिथि योग से कर देते हैं, अष्टमी तिथि आज लग गई है रात में ही, इसलिए अष्टमी तिथि रात में 12 बजे के बाद में ही समाप्त हो जाएगी, इसलिए सवेरे सूर्योदय के बाद में आप तिथि योग के अंत में अटक सूर्योदय के बाद में 6 बजे 9:39 के पहले ही ठाकुर जी का भोग लगा करके आप लोग कुछ कर लें। कल स्वामी जी का भक्ति वेदांत स्वामी महाराज जी हमारे गुरु भाई और हमारे शिक्षा गुरु दो नाते और एक मित्र तीन नाते, और एक तरह से उनका कहना नहीं चाहिए एक उनका भी शिक्षा दूं, क्योंकि मैंने उनको संन्यास दिलाया ना, मैंने उनको संन्यास दिलाया, उनको धोती पहनाया, मैंने संन्यास का वो पहनाया और दंड लेना सिखाया उनको, तो कौन गुरु हुआ? कितने नाते उनके साथ में, किंतु फिर भी मैं अपना शिक्षा गुरु उनको मानता हूँ।